फ्रेंडशिप नहीं है तो हम नहीं दिखाना चाहते हैं। इन्होंने कहा जी कि नहीं हम दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि हमारे फ्रेंड्स जो है हमें क्या क्या गिफ्ट्स देते हैं। तो अब ये पब्लिक डिस्प्ले के ऊपर चीजें होया करेंगी, तो पैर फिर तो डाके भी पिया करेंगे हैं जी फिर डाके का आप जो है वो ओपन करें रास्ते। चलो कोई बात नहीं है, आपने ना किया किसी ने किया, बहरहाल देखेंगे अब फिर क्या होता है मासूम चीजों का। तो ये इन्होंने जी आज कहा है। इसके अलावा जनाब जो इंडाइटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके बेटे हमजा शरीफ के लिए, जो ये इनके ऊपर केस था 16 बिलियन रुपीस की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसको फिर से डिले कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट जो है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के लॉयर अमजद परवेज आ जाए, उन्होंने कहा जी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो फ्लड की वजह से बड़े बिजी हैं, वो लाहौर नहीं आके अपीयरेंस नहीं दे सकते। लेकिन उनके बेटे जो हैं हमजा शरीफ वो आज आए हुए थे, इनके जो लॉयर थे मोहम्मद औरंगजेब वो भी इनके साथ थे। तो जज ने कहा कि 10 मिनट के लिए भी इतने जो है वो बिजी हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब के कोर्ट में सकते, तो उनके जो काउंसल हैं परवेज साहब उन्होंने कहा जी नहीं 10 मिनट की बात नहीं है, बात यह है कि उनको इस्लामाबाद से आना पड़ेगा। तो इस्लामाबाद से आके यहां पे लाहौर हाईकोर्ट में अपीयर होने के लिए अभी उनके पास टाइम नहीं है, तो आप प्लीज एक दिन का हमें और मोहलत दें और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है आपके सामने जो है होंगे हाजिर। अब पता नहीं है जी कि हाजिर होंगे कि नहीं, तो बहरहाल कोर्ट ने उनको फिर से एक दिन का जो है ग्रांट किया है वो। और इससे पहले जो है इनको दोनों को वालिद साहब को और उनके बेटे साहब को प्री जो अरेस्ट बेल भी थे वो भी दिए गए थे, लाहौर हाई कोर्ट है ना जी, तो वो जो ना अब उन्होंने किया। अच्छा जी, फाइनली इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जो है वो एक सबमिट किया है आंसर, और जिसमें कि उन्होंने बड़ी खेद जताई है कि जी वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसेशन जज थी जो जेबा चौधरी, उनके लिए जो मेरे अल्फाज थे शायद वो ठीक नहीं थे, क्योंकि इससे पहले ये हुआ था कि उनके काउंसल जो हैं बाबर एवान और बाकी के जो हैं उन्होंने एक छोड़ दिया था एक उनके नाम से मैसेज उधर कोर्ट में, और कहा था जी कि अगर कोर्ट समझती है कि मेरे वर्ड्स ठीक नहीं है, तो कोर्ट ने उसके ऊपर कहा था जो हमने आपको सारी डिटेल बताई थी कि ये एक ऐसा आदमी एक ऐसा रोल मॉडल जिसको दुनिया जो है सारी फॉलो करती है या खासतौर पर पाकिस्तान में, तो उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि वो एक रिटन जो है वो अपोलॉजी दें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक तो सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं इमरान खान साहब ने एक तो बड़ा कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, अथर मिनल्ला ने इनको ये कहा था तो उससे उन्होंने बड़ा शुक्रिया भी अदा किया अथर मिनल्ला साहब का, और उन्होंने कहा जी कि ठीक है मुझे सही तरफ जो है वो गाइड किया है कोर्ट ने, और ये हमने जो रैलीज निकाली थी शहबाज गिल का जब फिजिकल रिमांड के लिए कहा था जेबा चौधरी ने, तो उसके ऊपर फिर हम सारी जाहिर है पार्टी भड़क गई थी, लेकिन मुझे अफसोस है अपने वर्ड्स के ऊपर। तो ये 7 डेज थे इनके पास जवाब देने के लिए, तो विद इन 7 डेज फिर उन्होंने आज जो है इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया है, रिस्पॉन्स इसने दिया। मरियम नवाज साहिबा जो हैं आज वो लाहौर हाईकोर्ट फिर से पहुंची हैं, और उन्होंने कहा जी कि नैब ने बड़ी बदनीति दिखाते हुए पिछली गवर्नमेंट में मेरा पासपोर्ट ले लिया था 2019 में कि कहीं मैं भाग ना जाऊं, हालांकि इनके ऊपर केस था चौधरी शुगर मिल्स का जिसके ऊपर इनकी हियरिंग चल रही थी, इनको जब इन्होंने अपना फिर पासपोर्ट जमा कराया था तो उसके ऊपर इनको फिर फ्री अरेस्ट बेल जो थी वो ग्रांट की गई थी नवंबर 4 2019 में। इनके जो एडवोकेट हैं परवेज साहब उन्होंने कहा था जी कि 4 साल गुजर गए हैं फिर भी अभी तक कोई रेफरेंस इस केस में सामने नहीं आया है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस केस को खारिज करें और इसकी जो है अब इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि कल तक हम जो है इसकी हियरिंग को वो करते हैं डिसमिस, कल हम जो है फाइनली इसको सुनेंगे और इसके ऊपर अपना देंगे। इसके अलावा जी डिस्ट्रिक्ट और जो सेशंस कोर्ट है उन्होंने इमरान खान साहब की इंटरिम बेल जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है, और बाकी के भी जो पीटीआई के दूसरे लीडर्स हैं सितंबर 27 तक इनके ऊपर जो था सेक्शन 144 की वायलेशन का केस था जब इन्होंने आके कैपिटल के अंदर यानी इस्लामाबाद में अगस्त 20 को एक रैली की थी, और उसके ऊपर जो है अगस्त 25 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इनको इंटरिम बेल दी थी इमरान खान साहब को, और कहा था कि ये केस को हम डिसमिस करते हैं सितंबर 7 तक, और एक श्योरिटी बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा 5,000 रुपीज का उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग जो थी वो अब आज होल्ड की गई थी, और उसके ऊपर जो इनके काउंसिल थे बाबर एवान साहब उन्होंने कहा जी कि ये इंटरिम बेल जो है इसको एक्सटेंड किया जाए, तो आज इनकी जो है अब एक्सटेंड की गई है सितंबर 22 तक। इनका ये हैं वाडवा साहब हैं असद साहब हैं असद उमर जो है वो और इमरान खान साहब और कुछ और, तो ये इनको दिया गया है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं जी चौधरी परवेज इलाही, इन्होंने आज जरा थोड़ा सा यू टर्न दिखाने की कोशिश की है। हालांकि आपको पता है कि ये ए लाए हैं पीटीआई के, लेकिन पीटीआई से आज इन्होंने दूर हटने की कोशिश की और इन्होंने कहा जी कि जो कोई भी, इन्होंने तो मतलब है आज अजीब ही बात की, पता नहीं किस सोच में बैठे थे, कि जो कोई मिलिट्री के अगेंस्ट बोलेगा वो ना सिर्फ नेशन का दुश्मन होगा, इस्लाम का भी दुश्मन होगा। पायन से कोई पूछे कि मिलिट्री के अगर खिलाफ कोई बात कर रहा है तो वो इस्लाम का दुश्मन कैसे है, हैं पायन? इनसे आप कोई पूछे, पायन तुसी होशते विच हो, तुसी गल की कर, मतलब हर चीज में रिलीजन को घुसाया हुआ है, हर चीज में रिलीजन, यानी जो मिलिट्री के खिलाफ बोलेगा वो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा। वाह जी वाह, क्या लॉजिक है आपकी, है जी सर, थानू ते कहना चाहिए है पायन जान छोड़ो, जाओ घर बैठो, तुसी जो ना चौधराट दे काबिल नहीं हो। अच्छा जी भारत, तो इन्होंने कहा जी के चीफ ऑफ, असल में उन्होंने ये कहा जी कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान का, उसका काम है कि वो इस्लाम को सर्व करता है। नेशन को तो सर्व करता ही करता है, इस्लाम को करता है, पायल कैसे बेल्जियम में जमीन लेके अलेजली कैसे करता है भाई बताओ मैं। बहरहाल जी इन्होंने कहा जी ये इस्लाम को भी सर्व करता है, हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को भी करता है, तो भाई अगर डेमोक्रेसी को करता है तो फिर हर चौथे दिन मिलिट्री वालों ने डेमोक्रेसी खराब क्यों की होती है मुल्क में, है जी क्यों बूट आ जाते हैं। बहरहाल जी ये जी चौधरी परवेज इलाही ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो रूलिंग पार्टी, फिर उसके बाद उनको किसी ने होश दिलाई होगी, कोई चूंडी कटी होगी, पहन जागो की कह रहे हो, कहते हाँ ये जो रूलिंग जो कोलिशन है ये हमारे और मिलिट्री के बीच में वेज डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप हमारी लड़ाई नहीं करा सकेंगे, कोई आप मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में कोई फैला नहीं सकेंगे क्योंकि हम जो है मिलिट्री के साथ हैं। तो बहरहाल जी, और उन्होंने फिर ये कहा जी के जो इसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट के, पंजाब के गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी उसको अब हम फिर से चालू करेंगे और बहुत सारे लोगों को अब नौकरी मिलेगी और ये सारी जो इसके ऊपर फ्रीज लगाया हुआ था विद इन 10 डेज ये फ्रीज हटा दिया जाएगा। तो ये एक जड़ी है ना, कोई सीधी गल की थी इन्होंने। बहरहाल जी पता नहीं अब इनके एडवाइजर
एक ब्रेकिंग न्यूज दे दे।
हाँ जी,
द पर्सन दे वर लुकिंग फॉर द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन सस्कैचुआन has been located. Any minute you'll hear that before our news finishes, aap kuch khabri sunenge ki usko arrest kar liya gaya hai.
Achha.
Police have located and they are getting very close to him now.
Achha, theek
hai. Henderson, jo 30 saal ka ladka hai, उसको जो है उन्होंने देख लिया है, अब कहां पर है वो, और उसके बाद फिर अब जो पुलिस के दायरा जो है वो उसको करीब 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 करते हुए, दे पुलिस विल बी देयर वेरी सून, दे आर फॉलोइंग हिम राइट नाउ, तो अब उसको जो है वो अरेस्ट करेंगे।
ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने कहा है जी कि क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हैं, बहुत तूफान आए हैं, बहुत दिनों से जो है वो स्कूल्स बंद थे, तो इसलिए पंजाब का पूरा सिलेबस जो है इस जो एकेडमिक ईयर इसमें पूरा करना पॉसिबल नहीं होएगा, इसलिए 20% ऑफ द सिलेबस जो है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक उसको जो है कट किया जा रहा है, और क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस को पूरा किया जाए इस शॉर्ट टाइम में, तो इसका जो डायरेक्टिव है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को और जो जितने भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं पंजाब में उन तक ये बात जो है वे जल्दी ही पहुंचाई जाएगी और उनको बताया जाएगा कि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप जो है इसको सिलेबस को 20% कट करें। ब्लूमबर्ग की जनाब आज एक रिपोर्ट आई है और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो ये जो फ्लड्स आए हैं इसकी डेवस्टेशन का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। आज जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हैं वो इनसे बात कर रहे थे और इनसे बात करते हुए उन्होंने कहा जी ये सारे का सारा जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन तमाम जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज हैं उनको उठानी पड़ेगी जिनकी के वजह से, जिनकी के फैक्ट्रियों और कारखानों की और इतनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से ये आई है क्लाइमेट के अंदर खराबी और ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो उनको हमें हेल्प करना चाहिए रिहेबिलिटेशन और रीबिल्डिंग के लिए, क्योंकि हमारा इसके अंदर कोई भी वो नहीं है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की ये खबर जो है ये बताती है कि 45% ऑफ कॉटन आउटपुट जो है पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान की बड़ी कैश क्रॉप समझी जाती है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और अब $3 बिलियन की जो इंपोर्ट्स हैं रॉ मटेरियल्स की वो की जाएंगी ताकि जो भी कोई पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले हैं, जो पाकिस्तान के जो भी कोई नीड्स है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा जो है फूड की प्राइसेस बेतहाशा ऊपर चली गई हैं, इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है और इकोनॉमी जो है वो तो ऑलरेडी ड्विंडलिंग थी। तो अब इसके बीच में खबर आई है जी कि IMF जो है उससे शायद सिक्योर कर लिया गया है 1.16 बिलियन का लोन। डॉलर्स का लोन, तो अब ये पता चलेगा कि ये क्या है। बहरहाल जी, ब्लूमबर्ग की ये खबर कहती है कि पाकिस्तान की हालत काफी खराब है और गवर्नमेंट ने जल्दी अगर कोई ना किए, और वैसे तो उन्होंने वर्ल्ड जो पार्टनर्स हैं उनको भी कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है वरना ये डिफॉल्ट कर जाएगा, तो इतनी जो है वहां पे हालत खराब है। बलूचिस्तान के अंदर जी आज बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान एक फीमेल आयशा जहरी जो है, इसको असिस्टेंट कमिश्नर जो थी आज तक, उसको अब डीसी जो है वो लगाया गया है, फर्स्ट फीमेल डीसी, और इनको नसीराबाद के अंदर जो है वो पोस्ट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद हुसैन को, क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा बैड परफॉर्मेंस थी। आज ट्विटर के ऊपर बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो हैं, उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा जी कि ये बे इंतहा केपेबल खातून है, और इन्होंने ना सिर्फ ये कि लेवीज के पर्सनल के साथ रेस्क्यू में काम किया, बल्कि जिन जिन लोगों को जो फार फ्लंग एरिया में भी थे बलूचिस्तान में, उनको जरूरत थी, जो फ्लड अफेक्टीज थे, वहां जाके रिलीफ कैंप्स इन्होंने सेटअप किए और बहुत काम किया, और उसके वजह से इनको जो है अब डिप्टी कमिश्नर जो है यहां पर लगाया जा रहा है। तो ये पहली बलूचिस्तान की फर्स्ट फीमेल है जिनको के डिप्टी कमिश्नर लगाया गया है। एंटरटेनमेंट के अंदर जनाब, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो है रणवीर और आलिया भट्ट के बारे में, जो दिल्ली पहुंचे हुए थे अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र जो कि आने वाली है अभी थोड़े दिनों में, उसको उसकी प्रमोशन के लिए, और वहां पे ये कह रहे थे कि इनसे पूछा लोगों ने कि बॉलीवुड जो है उसको अनफेयरली टारगेट किया जाता है और उसको बॉयकॉट किया जाता है और उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जाती है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो रणवीर सिंह ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन का जवाब जो है वो डिप्लोमेटिकली देते हुए कहा कि देखें जी, मेरी फिल्म अभी थोड़े दिन पहले शमशेरा आई थी, जो मैं अपने लिए बात करूंगा, दूसरों की तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। मेरी जो फिल्म शमशेरा आई थी, वो शमशेरा जो थी वो उसने अच्छा नहीं किया था बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि लोग उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सके थे, और वजह यह होती है हमारी जो फिल्में बॉम हो जाती हैं बॉक्स ऑफिस पे कि उनका कंटेंट अच्छा नहीं होता है। अगर कंटेंट अच्छा होगा, अगर लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकेंगे, तो फिर वो फिल्में कोई खराब नहीं होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी फिल्म जैसे शमशेरा थी उसको किसी ने टारगेट किया या जानबूझ के वो जो है उसके खिलाफ कोई बोले। अगर उसका कंटेंट अच्छा होता, लोगों के साथ रेजोनेट करती, तो वो जरूर सक्सेसफुल होती। तो बॉलीवुड जो है उसको कोई, मुझे नहीं लग रहा कि कोई टारगेट कर रहा है। आज एक बहुत ही ओल्ड इंटरव्यू जो है मनोज कुमार साहब का, वो सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने रिवील वो कर रहे हैं कि राज कपूर जो थे, जिनके के साथ उन्होंने 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर जो है उसमें काम किया था, तो उसके बारे में यह है। यह इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज आई थी और वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन एक्सप्रेस, उन्हीं की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, इनका एक इंटरव्यू आया था जो कि मतलब अब सामने आया पहली बार बहुत अरसे के बाद, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि एक दफा राज कपूर मेरी गोद में सर रख के बहुत ज्यादा रोए, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज्यादा हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग। वो वजह यह थी कि कभी वो मुझे एक फोन करते थे और उनको कहा जाता था शायद दूसरी तरफ से कि वो आपसे मनोज कुमार शायद बात नहीं करना चाहते या उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि एक दफा वो कहते हैं एक कंपोजर थे जय किशन, उनके रेजिडेंस पे हम एक दफा 4 बजे के करीब बैठे थे, वहां पे राज साहब भी आए और जो थे मैं और मेरी वाइफ शशि भी थे, तो हमने उनको बताया जी हम तो जरूरत ही नहीं कर सकते कि हम आपका फोन कॉल ना लें या आपसे बात ना करें, लेकिन जिस वक्त आपके शायद फोन कॉल आ रहे थे, मैं मुंबई में शूट कर रहा था उस वक्त, तो मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं आपके के आपके फोन कॉल्स आ रहे थे। और ये जो इंसिडेंट था ये हुआ था रीगल थिएटर दिल्ली के अंदर, तो वो कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो कोई मैसेज ही नहीं मिला, तो आप जो है हम तो
मिसअंडरस्टैंडिंग,
हाँ आपको हम शो मैन नहीं मानते, हम तो आपको कर्म योगी मानते हैं, तो हम तो आपके सामने आंख भी ऊपर नहीं कर सकते। तो कहते हैं उसमें फिर उन्होंने मुझे गले लगाया, वो जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस पर वो बड़ा शर्मिंदा हुए, क्योंकि वो समझते थे कि मैं बड़ा प्राउड और बड़ा खराब आदमी हूं, तो फिर वो तो वो उन्होंने आज जो है ये अपना उनका जो है एक ये इंटरव्यू सामने आया। एंड जनाब, हमारे जो ड्रेक हैं, कनेडियन रैपर हमारे डीरेक, और जो बास्केटबॉल चैंपियन है लेब्रॉन जेम्स, और रैपर जो है फ्यूचर, ये अब बड़ी मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि इनको जो है सू किया गया है। इनकी जो डॉक्यूमेंट्री जो अब इस वक्त टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, ब्लैक आइस, जो कि अभी होएगी प्रीमियर, इसको किया जाएगा रॉय थॉमस हॉल के अंदर, इनको सू किया है $10 मिलियन के लिए। इनके एक जो है फिल्म मेकर ही हैं हंटर साहब, उन्होंने बिल हंटर जो के एक्स हेड हैं एनबीए प्लेयर्स एसोसिएशन के भी, वो कह रहे हैं कि ये फिल्म जो थी इसकी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मेरे पास थी, क्योंकि मैं ये बना रहा था ब्लैक जो आइस थी, लॉस्ट हिस्ट्री ऑफ कलर्ड हॉकी लीग्स ऑफ मेरी टाइम्स 1895 से 1925 में, तो ये तो राइट्स मैंने लिए थे, उस पर मैं फिल्म बना रहा था और मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, तो ये आपने इसकी इसकी तो जो मैंने अडेप्टेशन करनी थी मैंने करनी थी, आपने कैसे ले ली? क्योंकि इसके अंदर जो है ये सिर्फ अमेरिकन ही नहीं है, इसके अंदर कैनेडा के भी जो बेस्ट ब्लैक प्लेयर्स हैं जो के थे बिटवीन 1895 टू 1930s, वो भी इसके ऊपर इस डॉक्यूमेंट्री में बात होनी थी। तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरा आइडिया था और मैं उनसे बात कर रहा था और मैं ये फिल्म बनाने वाला था, तो ये अब आप जो है ये जो ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैं ह्यूबर्ट डेविस और इनके साथ मिलके आप कैसे ये फिल्म बना रहे हैं? तो इन्होंने $10 million का इनको सू किया है। तो अब देखेंगे क्या हुई गया, ठीक है जी।
$10 million फॉर लेब्रॉन जेम्स एंड
ड्रेक
पीनट्स
के लिए,
इट्स नॉट अ बिग डील, मगर ये इज अ क्वेश्चन ऑफ प्राइड,
इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्राइड। हाँ, वो कहते हैं जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने वायलेट किए हैं, तो ये है। और जनाब ये जो श्रीलंका से 6 विकेट से हारा है इंडिया, इसके ऊपर हमारे जो लेजेंडरी बैट्समैन है इंजमामुल हक वो बड़े भड़के हुए नजर आए। इंजमामुल हक ने कहा मुझे तो बॉडी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, ये तो मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है और ये है मेन रीजन इनकी डिफीट का। इन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूं कि कोहली किस तरह बैटिंग कर रहा था, ये प्लेयर इस कैलिबर का जो है ये कैसे इतना ज्यादा अंडर प्रेशर आया और कैसे इसने इतनी गंदी शॉट खेली, और इससे पहले जो है वो डॉट बॉल्स वो खेलता रहा और फिर वो आउट भी हो गया। और वो कहते हैं जी कि जिस वक्त जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप उनकी शक्लें देख के आपको नजर जब आ रहा होता है कि ये टेंस हैं, खासतौर पे जब रोहित शर्मा का जो रिएक्शन था जब केएल राहुल आउट हुआ था, तो उससे ये मैसेज ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है कि टीम जो है बेतहाशा प्रेशर में है। तो अगर इस तरह के इंप्रेशन मिलेंगे तो फिर बाकी टीम भी जो है वो देखेगी कि जो है हमारा कैप्टन प्रेशर में है, तो वो भी प्रेशर पे आ जाते हैं। आज इन्होंने ये सारी बातें इनका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये कर रहे थे और इसको जो है जाहिर है कि थाउजेंड्स ऑफ हिट्स जो हैं वो मिली हैं। एंड जनाब बाबर आजम हमारे जो मासूम हैं, बड़े उनको ट्रोल किया जा रहा है और उनके बारे में बड़ी स्टोरियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस दिन से आपने विराट कोहली से हाथ मिलाया है उस दिन से उनका जिंक्स जो है बैड मैजिक आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया है।
दोनों का ही हो गया,
तो आप जो है आप इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि एशिया कप में तो आपकी फॉर्म इतनी खराब है कि एक मैच में आपने 9 balls per 10 बनाए, दूसरी में 8 balls per 9 बनाए, तीसरी में 10 balls per 14 बनाए और आज तो आप 0 पे ही आउट हो जाए, तो ये बड़ा मुश्किल है, आपने क्यों हाथ मिलाया है विराट कोहली से?
That is amazing.
तो ऐसी ऐसी तस्वीरें अब आई जा रही है ना, वो और भी बहुत सारे इंडियन स्टार्स हैं उनकी, वो ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके और यूं और यूं कि भाई मैं खाली हाथ रह गया और मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन ये जो है ना ये आइकॉनिक पिक्चर थी जिसमें वो हाथ मिला रहे हैं, वो तो लोग उनको कह रहे हैं कि भाई हाथ ना मिलाना आइंदा कोहली से कोहली से हाथ नहीं मिलाना, दिखाओ दिखाओ जरा पिक्चर।
कोहली भी तो ये कह सकता है ना फिर,
हाँ ये जी पिक्चर ये,
हाँ तो कोहली भी तो ये कह सकता है, कोहली ने भी लास्ट 2 matches में कुछ नहीं करके दिया।
हाँ तो बस वो लोग जो है अब कोहली को नहीं कह रहे, बेचारे बाबर आजम को बहुत ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहते हैं खबरदार तुमने आइंदा कोहली से हाथ मिलाया तुम्हारी फॉर्म खराब हो गई है, क्योंकि उसका बैड जो इफेक्ट है वो तुम्हारी बॉडी में एंटर हो गया, तुम कुछ नहीं कर सक रहे।
जस्ट टू लेट यू नो दिस इज जस्ट अ जोक, ओके?
नहीं ट्रोल्स हैं ये, ट्रोल्स हैं जिसकी कि ये अब खबर बनी है, तो ये तो ट्रोल्स हैं सारी, ठीक है। अच्छा जनाब ये इंडियन टीम जो है अब आपको शायद पता चल ही गया होगा कि अब क्वालिफाई नहीं कर सकी है ये इसके लिए एशिया कप के लिए, क्योंकि उससे पहले ये इंडिया से हारे थे और जो है सॉरी ये उससे पहले पाकिस्तान से हारे थे और फिर श्रीलंका से हारे हैं, और उसकी वजह से जो है आज इनका चांस था, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार जाता तो दे वुड हैव बीन यू नो स्टिल इन द रेस, लेकिन चूंकि आज पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीत गया है तो जो इनका पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मैच था शारजा क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा ही थ्रिलर, तो सुपर फोर जो है उसका एनकाउंटर था फाइनल के लिए, पाकिस्तान ने आज क्वालिफाई किया है और इंडिया जो है अब बाहर है। तो इसके ऊपर जो है हिंदुस्तान में लोग बड़े भड़के हुए हैं कि ये किस तरह की ये गेम हो रही है, देखो जी ये गेम एक खासतौर पर आखिरी छक्का देखो उसका नसीम शहद है, वह जी वह क्या बात है, तो ये जो हमारा मुन्ना है ये प्यारा सा छोटा सा बेबी, ये बड़ा खुश हुआ आज,
देखना इसकी माँ बाप की दुआएं होंगी इसके पास,
दुआएं भी हैं, लेकिन वो कह भी रहा था ना अपने इंटरव्यू में कि मैं तो, उन्होंने कहा आपने ये कैसे किया, कहता है वैसे मैं तो नेट प्रैक्टिस में प्रैक्टिस बैटिंग की भी करता रहता हूँ, वैसे तो मैं बॉलर हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ बैटिंग की, और मुझे वो कहते हैं, हमें अब टीम कहती है कि आपने एंड तक सारे लड़कों ने बैटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, बेशक आप बॉलर्स हैं। तो वो जो है उस पर, तो ये हमारा बेबी जो है आज जनाब बड़ा खुश हुआ।
ये किस्मत, इसको कहते हैं कि किस्मत, ऑनेस्टली गॉड लुक एट द किस्मत, कि इनका चांस नहीं था ये इसमें एशिया कप में आने के लिए।
या 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 या
शायद
शहनशाह अफरीदी चूंकि बाहर बैठा है,
अफरीदी जो है वो
बाहर बैठा, तो इसको अंदर किया उन्होंने,
इसको अंदर किया। मगर एक इतनी अच्छी चीज उनको मिल गई अब कि अब जो है नेक्स्ट
जगह बना ली, अब अपनी
जगह बना ली इसने। अब जो है नेक्स्ट टाइम जब ये वर्ल्ड कप होने वाला है
इंशाल्लाह,
तो उसमें इनके पास ये और शाहिद अफरीदी और दो और उनके जो पेसर्स हैं वो सब मिलकर जब खेलेंगे तो पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यस यस,
यू नो देखने वाली बात है ये कि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी पाकिस्तान। अब ये है कि शाहिद अफरीदी को भी अगर अंदर लेके आए,
शाहीन
शाहीन अफरीदी को भी अगर अंदर लेके आए तो फिर निकालेंगे किसको, दैट्स अ गुड पोजीशन टू बी।
अब ये बात है कि अब हसन अली जो है ना उसकी अब जगह नहीं बन रही है टीम की।
हसन अली जगह नहीं बन रही,
हसन अली की अब,
हालांकि वो थे आज फील्ड में थे,
वो थे वैसे तो आया हुआ है वो उसके साथ, कि अगर कोई भी इंजर हो जाता है तो फिर उसकी जगह ये खेलेगा, लेकिन बन नहीं रही है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़,
ही इज अ गुड प्लेयर।
नहीं बिल्कुल, जो हमारा अक्टूबर के अंदर जो इंडिया के साथ मैच हुआ था उसमें तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी उसने,
इज अ गुड प्लेयर।
हाँ हाँ, बहुत
गुड प्लेयर को जो है चांस नहीं मिल रहा तो इट मींस के यू नो व्हाट, आपकी टीम बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। यस यस बिल्कुल। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट टूनिजियाज ऑन्स जुबेर, 28 ईयर्स उनकी एज है। शी हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट अरब फीमेल टेनिस प्लेयर टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ यूएस ओपन। इन्होंने इससे पहले भी जो थी वो जुलाई के अंदर ये विमिल्टन के फाइनल में पहुंची थी और इन्होंने जो है वहां पे काफी अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद फाइनल तक नहीं, मतलब क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। और इसके अलावा इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जबरदस्त जो प्लेयर थी एजला टॉमलैन चैफ्सको, उनको भी कल हराया है इन्होंने 6-4, 7-6 से। और अब ये फेस करेंगी सेमीफाइनल्स में कैरोलिन गार्सिया को। तो अरब और अफ्रीकन वर्ल्ड जो है वो बड़ा इनके ऊपर प्राइड फील कर रही है कि ये अब जो हैं पहुंची हैं यूएस ओपन के अंदर।
अमेजिंग,
तो अमेजिंग यस, बड़ी माशाल्लाह इसकी जबरदस्त फिजीक है। अगर आप इसकी फिजीक देखें, ऊंची लंबी टॉल एंड यू नो शी द फिजीक इज सो जो है वो ऐसे अच्छी है। दिखाओ जरा जीशान फिर से पिक्चर दिखाओ इसकी जुबेर की, ये देखें जरा कितनी जबरदस्त इसकी ना, बड़ी स्ट्रांग बिल्ट है, बहुत स्ट्रांग बिल्ट है। तो उसके ऊपर जो है ये बड़ा लोगों ने आज खुशी मनाई, लेकिन बहरहाल जी सानू ते खुशी जड़ी है जड़ी पाकिस्तान दे जितन दी है ना ओ खुशी जड़ा ना ओ नशा जड़ा ना रवेगा।
नहीं मगर बहुत ही, आप ये देखें कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन,
एज
ए स्पोर्ट्स पर्सन फॉर मी इट इज के वो इतना इंटरेस्टिंग मैच था,
थ्रिलिंग थ्रिलिंग।
आप ये देखें जब उन्होंने 130 पे सब पूरी टीम को आउट कर दिया, मतलब उनके जब ओवर्स पूरे हो गए, टारगेट वॉज 130
और वो आप तो कह रहे थे पीस ऑफ केक है,
तो ये तो लोगों ने कहा कि इसके तो कोई बात नहीं है,
ये तो 181 बना, 4 बनाए हैं इंडिया के अगेंस्ट,
तो क्या क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है कि 130 के। मगर जब शुरू मैच हुआ बाबर आजम जो है दूसरी बॉल पे आउट हो गए,
तो बट देन देयर इज अ डिफरेंस ना माजिद भाई, वो जो मैच था जो इंडिया के अगेंस्ट था ना वो दुबई स्टेडियम में था, ये जो मैच था ये शारजा में था, तो पिच का डिफरेंस है।
हाँ, शारजा में लोग ज्यादा स्कोर नहीं करते हैं, हमेशा पास हिस्ट्री रही है कि शारजा के स्टेडियम में स्कोरिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है, मगर फिर भी यू नो व्हाट
130 तो कुछ भी नहीं था ना पाकिस्तान जैसी टीम के लिए,
130 कुछ नहीं था उनके पास। अच्छे वो जो आपकी अफगानिस्तान की टीम है, हमेशा वो अपने स्पिनर्स पे बड़ा नाज करती है, और स्पिनर्स और उनका जो वो स्पिनर है राशिद, ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। यानी मगर एक चीज ये देखने में आई है कि अब आप अफगानिस्तान को इजी नहीं ले सकते।
नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। इंजमाम हलक ने तो हांगकांग के बारे में भी कहा था कि पाकिस्तान टीम को हांगकांग को भी इतना इजी नहीं लेना चाहिए,
हांगकांग तो
अफगानिस्तान जो है वो तो काफी स्ट्रांग है टीम अब।
हाँ, अगर हांगकांग से भी हम डरने लगे ना तो फिर इसका मतलब तो उसमें है ही नहीं,
सा नहीं
वर्ल्ड क्लास में नहीं है।
अच्छा,
नथिंग अगेंस्ट हांगकांग, मगर हांगकांग इज नॉट अ क्रिकेट नेशन है ना, इज नॉट अ क्रिकेट नेशन. तो हांगकांग पे अब अगर कल के दिन दुबई की टीम आ गई यहाँ पर और हम कह रहे हैं जी दुबई से जरा देख के समझ, आई डोंट थिंक सो. यू नो दुबई इज नॉट अ
क्रिकेट नेशन.
या जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज,
इवन श्रीलंका एंड बांग्लादेश, यू नो ये जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान के समेत, तो ये अब जो है अफगानिस्तान नाम भी इसमें आता है, वेस्ट इंडीज का नाम आता है इसके अंदर. तो ये जो है ये टीमें जो हैं जब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं तो वो कहते हैं ये अप टू पार नहीं खेले. इन्होंने हम सही कि अप टू पार नहीं खेले ये लोग, इनको अच्छा खेलना चाहिए था. मगर जब कोई कहे कि भाई हांगकांग से भी आप हल्का ना दें, और कम ऑन, यू नो आई डोंट बिलीव कि हांगकांग के पास ऐसी क्लासिक बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के पास या दूसरी नेशंस के पास हैं, या बैट्समैन जो है यू नो रेकग्नाइज बैट्समैन. अच्छा इनके जो वो थे अजमतुल्लाह, क्या नाम,
हजरतुल्लाह
वो जो है वो ही
सारी उसने क्या मारे छक्के.
अभी वो जो है अभी एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने मारे हैं, सबसे ज्यादा छक्के. तो यू नो एक दफा अभी कुछ महीनों की बात है कि इन्होंने जो है 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे.
ओहो अच्छा अच्छा अच्छा.
तो ही गॉट पावर एंड टेक्निक एंड ही डिस्ट्रॉय कर देता है.
हाँ.
किसी बॉलर की जिंदगी डिस्ट्रॉय करनी हो ना तो उसको लेके आओ इसके अगेंस्ट.
पर बड़ा उधर पठान है तो हमारे पास भी पठान है ना फिर. हमारे पास भी पठान है
नसीम शाह ने
बड़ा हमारा पठान को हल्के में नहीं लेने का है. ये पाकिस्तान का पठान है.
इट वॉज अ वेरी गुड गेम.
बहुत अच्छा. जैसे इंडिया के साथ भी हो गई थी ना, ऐसे ऐसे करके हम दौड़ से कर रहे थे, हे हूं जितिया हूं आ रहा, हूं जितिया हूं आ रहा, ऐसे ऐसे चल रहा था. अच्छा उसके साथ श्रीलंका के साथ भी ऐसे ही हो रहा था माजिद भाई. अच्छा हर मैच जो है ना, यानी मुझे आज हंसी आ रही थी, मैं क्या पाकिस्तानियों ने तहिया कर लिया कि जिस वेले तक साडा त्राणा निकल जाए उस वेले तक इन्होंने सानू नहीं दसना कि ऐसी जी जित गए हैं, साडा त्रा निकाल गए फिर हम जीत गए.
दे वांट एक्साइटमेंट ना. अगर सिर्फ 15 ओवर में हमने 130 बना दिए थे, विच वाज पॉसिबल है ना, कि 15 ओवर में हमने 130 रन बना दिए, तो
यानी अगला बंदा जरा मेरे जी बुढ़ा बंदा है वाल शाल खिंच के गंजा होके बैठ जाए, उसके बाद पता चले वो पाकिस्तान से जीत गया है.
फिर दोबारा बार बना
फिर लगाओ, अब वो कैसे लगे अब वो बॉल कैसे लगेंगे भाई.
नहीं नहीं, तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप एक्साइटमेंट जब तक नहीं आएगी, यू वॉच द स्पोर्ट्स फॉर एक्साइटमेंट.
भाई देखो माजिद भाई के सारे क्रिकेट वाले भाइयों, जो क्रिकेट खेलते हो हमारा त्राणा निकालो. त्राणा निकाल निकाल के तुमने हमें देखे कितना पितला कर दिया है. तो भाई ये ना करो सही तरह खेला करो.
हाँ नहीं नहीं, अब अगला मैच
इंडिया के अगेंस्ट भी ऐसे ही है, श्रीलंका के अगेंस्ट भी ऐसे ही है, आज अफगानिस्तान के साथ भी वैसे ही है.
श्रीलंका से खेला दिया पाकिस्तान
है जी. नहीं इंडिया खेला था ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए, इंडिया और श्रीलंका के लिए लोग कह रहे थे कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा. तो
मगर ये श्रीलंका से अब मैच है हमारा, उसके बाद फिर फाइनल भी जो है वो श्रीलंका के साथ होगा.
अच्छा आपका ये फाइनल वर्ड है,
फाइनल
फाइनल है, बिल्कुल फुल फाइनल,
फुल
फुल एंड फाइनल
पाकिस्तान श्रीलंका इन फाइनल चैंपियनशिप. और अब मेरा तो ख्याल ये है कि श्रीलंका का तो मारना चाहिए ना.
आहो जी देखो जी, श्रीलंका और पाकिस्तान ने भाई भाई बन के खेलना है. श्रीलंका को ने पाकिस्तान को कहना है देखो पैन साडे इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है, हम बड़े गरीब हुए हुए, हमारे प्योर तशद्दुद नहीं करना है जी. पाकिस्तान ने कहना है देखो भाइयों हमारे मुल्क में बेताशा सलाब है, तो आपने भी हमारे पे अत्याचार नहीं करना है जी, अत्याचार नहीं करना.
तो ऐसा
करो, सारे भाई भाई बन के खेलो है.
ड्रॉ करो,
हाँ ड्रॉ करो यार,
है ना, ड्रॉ कर दो, ड्रॉ गया जी.
आहो
सुपर ओवर आएगा तो उसको भी ड्रॉ कर देंगे.
हाँ ड्रॉ करेंगे, बट ड्रॉ ही चलते रहेंगे.
ड्रॉ ड्रॉ चलते रहेंगे।
हाँ, दो दिन ड्रॉ चलते रहेंगे, उसके बाद लोग कहेंगे पैन चलो अद्धा कप नू अद्धा कट्टो भाई कट्टो भाई अद्धा इसनू दे अद्धा इसनू दे
जान छोड़ो हमारी।
पाई पाई बन के भी खेलना है आपने, पाकिस्तानी मजद भाई के पाकिस्तानी भाइयों और श्रीलंकन भाइयों सारों ने भाई भाई बन के खेलना है। हाँ जी ठीक है जी।
पाकिस्तान पाकिस्तान का होगा कल, कल इंडिया और अफगानिस्तान का है।
हाँ हाँ
है ना,
तो कल इंडिया जीतेगा, अब जाहिर है कल तो इंडिया जीतेगा ही, इट डजंट मैटर। लेकिन
अगेन डोंट टेक इजी, अफगानिस्तान को इजी ना ले।
हाँ, हाँ, नहीं हूं मतलब है कि फिर इंडिया ते फिर हूं बाहर ही बैठे अगर अफगानिस्तान से भी हारेगा। माजिद भाई इतनी तो जबरदस्त इंडिया,
पाकिस्तान से हारा वो, श्रीलंका से हारा वो, तो अब
नहीं, अब अफगानिस्तान से तो नहीं हारेगा।
कहेगा यार अफगानिस्तान कह रहा यार कम
गिव अस अ ब्रेक यार, इतने हम अच्छे प्लेयर,
आप उससे भी हार गए उससे भी हार गए, हमने क्या किया, हम भी आपके
दोस्त भी खेलना आए हैं, अभी भी खेलना है, सानू भी खेलने दो, एक ही मजाक है
उसको कह रहे हो कि यार
सारे मैच तो नहीं हमने हार रहे ना, आखिर हमने वापस इंडिया भी जाना है, व्हाट इज दिस।
तो मगरिब अजान 6:37, ये किसने कहा है मुझे 6:37 पे,
ये जीशान साहब आ गए हैं वहाँ पे हमारे साथ।
अच्छा स्काइप पे जीशान भी है,
मैच के बारे में
कैसे आप लोग
जी, हम ठीक है जीशान, नहीं मुझे तो आ रही है सही, हाँ हाँ मुझे
लगा दूं तो
मेरी,
हाँ हाँ बिल्कुल सही आ रही है जीशान।
अच्छा अच्छा, मैच की बात होती थी तो मैं अपना इनपुट में थोड़ा सा डाल दूं मैच के हवाले से।
जो
मैच हुआ आज जॉर्ज मेहता का जो छक्का था वो उसकी जो है याद दिला दी,
वही तो मैं कह रही थी, वही तो मैं कह रही थी, और वो भी बात कर रहे थे ये सारे रवि शास्त्री से,
वही चार छक्के लगाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, और आज नसीम शाह ने दो छक्के लगाए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में छक्के लगाना और ये जो है पाकिस्तान की रिवाज बन चुकी है।
ओ यस,
मगर जीशान जी कहते हैं ना कि शारजा का जो ग्राउंड है वहां पर हाई स्कोरिंग और छक्के नहीं पड़ते हैं।
माजिद भाई एक वक्त था शारजा में
पाकिस्तान बहुत मारता था छक्के, जब माजिद भाई
जी जी पाकिस्तान शारजा का जो है सबसे ज्यादा ओडीआई होस्ट करने का एक रिकॉर्ड मौजूद है, और शारजा में सबसे ज्यादा बदकिस्मती से जो है मैच फिक्सिंग का ग्राउंड कहा जाता था किसी जमाने में, तो इसीलिए आईसीसी ने शारजा में किसी किस्म की क्रिकेट जो है एक जमाने में बैन कर दी थी। तो अब वो स्पीच को जो है थोड़ा सा जिस तरह आपने कहा कि रन बनाना अब इतना आसान नहीं है शारजा के उसमें, तो आज भी मैच का जो तसलसल वही रहा, अफगानिस्तान के जो बैट्समैन थे उन्होंने सिर्फ 130 रन का टारगेट दिया, पाकिस्तान की उस टीम को 130 रन का टारगेट दिया जिसने इंडिया के खिलाफ जो है 183 रन का जो टारगेट था वो एक ओवर पहले ही पूरा कर लिया। तो शारजा की जो विकेट है वो उस तरह की नहीं रही है जिस तरह की पहले हुआ करती थी आज से 20-22 साल पहले या 18 साल पहले।
बहुत छक्के मारते था पाकिस्तान, बहुत चप्पा, स्पेशली जब इंडिया के साथ खेलते थे तो शारजा में तो इतना हारना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब शारजा में नहीं, आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, और ये जो जुमे का आप मैच डाल लेते हैं पाकिस्तान के साथ, जुमे का तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ हम।
तो निशांत क्या समझते हो, अब क्या होने वाला है आगे?
महेश भाई देखे अब जो पाकिस्तान जो है तो फाइनल में पहुंच गया है 99%, अब देखना ही होगा कि श्रीलंका जो है किस तरह से जो कल का जो मैच है वो एक इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मैच, ये जो मैच है वो जो भी जीतेगा उससे सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, श्रीलंका के पास जो है 4 पॉइंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास भी है 4 पॉइंट्स ऑलरेडी मौजूद है। श्रीलंका और पाकिस्तान जो है अगर देखा जाए तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए जो इतवार को खेला जाएगा। कल जो मैच है इंडिया और अफगानिस्तान के माबेन वो एक दोस्ताना मैच होगा, एक रिवायत जो है वो टूर्नामेंट की वो बरकरार रहेगी, और पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच होगा वो भी दोस्ताना होगा, तो देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम उस मैच में जो है किस तरह की एकमत अमली करती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक दो प्लेयर्स को जो है वो थोड़ा रेस्ट देंगे ताकि फाइनल के लिए जो
मेरा ख्याल है
वो जो है फाइनल गेम के लिए तैयार हो, तो मुझे और मेरे भी यही होगा कि पाकिस्तान के मैनेजमेंट और कैप्टन चाहेंगे कि कुछ जो है कुछ खिलाड़ियों को, और मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान को शायद लगता है कि उनको रेस्ट करा दिया जाए।
और
आज एक और भी
शाह जो है वो भी कैप्टन विकेटकीपर बैट्समैन है, तो रिजवान की जगह वो विकेटकीपर बैट्समैन बन सकते हैं। तो लेकिन मैं एक अपनी प्रेडिक्शन कर रहा हूं,
सही कह रहे हैं आप, और उसके आज भी तो किसी
क्या होता है जुम्मे को जब पाकिस्तान और श्रीलंका मैच होगा तो उसमें पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, किस तरह से जो पाकिस्तान अपनी टीम लेके उतरेगी।
आज भी जो एक पाकिस्तान का प्लेयर था जिसको अगेन क्रैम्प्स पड़ गए थे और फील्ड में आए थे, कौन था वो?
शादाब खान।
तो शादाब को भी रेस्ट देना चाहिए, रिजवान को भी रेस्ट देना चाहिए।
देखिए शादाब को आप रेस्ट बिल्कुल देते हैं, लेकिन शादाब जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, जिस तरह से नंबर 5 पे आके उन्होंने बैटिंग की है, और राशिद खान को जो उन्होंने 3 छक्के लगाए वो देखने काबिल थे, और जो 2 छक्के थे वो बिल्कुल स्टैंड के बाहर फेंके थे, और वर्ल्ड जिस तरह से 5 मिनट पहले जो तस्करा हो रहा था मैच के हवाले से, राशिद खान क्विकेस्ट T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, उनके अगेंस्ट खेलना T20 में इतने प्रेशर मैच में खेलना आसान नहीं है। और जिस तरह से बाबर आजम ने अपने प्लेयर्स पे एतमाद करके शादाब खान को जो भेजा नंबर 5 पे, वो एक बहुत बड़ा दिल होता है कप्तान का, और इस तरह से अपने खिलाड़ी को हौसला भी देना चाहिए और भरोसा भी होना चाहिए, और उनको जो इस तरह की जो सूरताल होती है उसमें शादाब खान को जो भेजना जो है मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अच्छा और अच्छा फैसला था। तो देखें आपके जो खुर्शीद शाह थे, मोहम्मद नवाज थे और आसिफ अली थे, इन तीनों बैट्समैन को जो है बाबर आजम ने पीछे रखा और शादाब खान को आगे भेजकर उनसे वही कहा गया और उन्होंने वही किया जो बाबर आजम चाह रहे थे। तो एक ब्रिक्स इनिंग के लिए शादाब रशीद खान को जो छक्के लगाए उन्होंने वो देखने लायक थे।
मगर वो आज एक चीज से जो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि वो उनका जो अफगानिस्तान की बॉलिंग एंड फील्डिंग वाज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग।
या बिल्कुल,
क्या कहते हो आप?
जी महेश भाई बिल्कुल आपने सही कहा, अफगानिस्तान के जो आधी टीम है दुनिया की जो भी T20 लीग्स होते हैं उसमें शामिल होते हैं, चाहे वो जदाई हो, रहमतुल्ला हो, राशिद खान हो, मोहम्मद नबी हो, ये जो 4-5 जो उनके खिलाड़ी हैं, मेन जो खिलाड़ी हैं वो दुनिया के सारे लीग खेलते हैं, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग हो गए, कैरेबियन लीग हो गए, बिग बैच हो गए, इंडियन प्रीमियर लीग हो गई, ये सारे लीग खेलते हैं, उनको ये जो लड़के हैं इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इनको क्रिकेट की पता चल गई है। तो क्रिकेट में जो एक अफगानिस्तान का एक ट्रेंड चल गया था कि भाई जो वो जैसे अगर टारगेट ले रहे हैं या टारगेट दे रहे हैं तो वो बहुत एग्रेसिव खेलते थे या प्रेशर में आके जो है बोल्ड आउट हो जाते थे, अब वो अफगानिस्तान की जो टीम है वो संभल गई है। जिस तरह से आपने बात की मोहम्मद नबी की, जो कैप्टन है वो देखिए वसी तजर्बा है उनका IPL खेलने का, अब वो सीख गए हैं कि किस तरह से जो है कोई भी अपोनेंट हो उनके खिलाफ जो है किस तरह से हम खेल सकते हैं।
अच्छा एक बात मैं पूछना चाहती हूँ जीशान, ये लड़के जो थे कभी खेलते होते थे पिशावर के अंदर, तो बेसिकली तो जो है ये यहाँ से क्रिकेट सीख कर गए हैं, और इस वक्त भी जो है इनके बॉलिंग कोच जो हैं उमर गुल हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो हमारे बहुत लेजेंडरी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इनको बहुत ग्रूम कर दिया है ये जो है अफगानिस्तान के लड़के?
जी सबसे पहले तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जब शुरू हुई थी उसके जो बैटिंग कंसल्टेंट थे वो इंजमाम हक थे, उसके बाद मोइन खान ने बेड़ा उठाया था, राशिद लतीफ जो है अफगानिस्तान टीम के साथ कोचिंग मैनेजमेंट टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और आपको अगर याद होगा मोहम्मद शहजाद जो इनके विकेट कीपर बैट्समैन है वो आजकल जो अभी KPL में कश्मीर प्रीमियर लीग हुआ उसमें जो है उनका हिस्सा थे। तो मोहम्मद शहजाद, राशिद खान जो अफगानी जो अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनका बहुत गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, जो पाकिस्तान के जो जिनका मैंने अभी नाम लिया है इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ, मोइन खान, और अभी हाल ही में जो है उमर गुल को जो है उनको बॉलिंग कोच उनका बनाया गया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, और मुझे लगता है कि सही रास्ते पर चल पड़ी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, अगर यही इसी तरह की अगर परफॉर्मेंस रही अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तो एशियन जो टाइगर्स थे जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसमें जो एक खतरनाक जो एक इजाफा होने वाला वो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का है। UAE भी बतौर काफी दफा जो है एशियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रही है, हांगकांग भी, नेपाल भी, लेकिन मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान है ये जो चार टीमें थी बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका, अब जो पांचवा जो खतरनाक जो टीम है वो अफगानिस्तान हमारे सामने उभर के आ गई है। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा और इस एशिया कप में भी देखा कि अफगानिस्तान की टीम जो है एक कंप्लीट पैकेज के साथ जो है ग्राउंड में उतरती है और उनके जो खिलाड़ी हैं भरपूर जो अपनी जो जिम्मेदारी है वो देते हैं और जो कैप्टन है वो बड़ी सेंसिबल होके जो है कैप्टानी करते हैं। मोहम्मद नबी ने जो है आज बहुत अच्छी कैप्टानी की,
अमेजिंग कप्तानी, अमेजिंग
कप्तानी, बहुत अच्छा गेम हुआ, पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, लेकिन एक किसी एक टीम को जीतना तो आज जो नसीम शाह ने आज किया है वो शारजा का छक्का मियादाद का उसकी याद दिला दी। और ये जो नसीम शाह के जो दो छक्के थे मुझे नहीं लगता कि अगले 50-100 सालों में जो है लोग इसको भूल पाएंगे और इसको हमेशा एक दिन नए दिन के साथ जो इसको याद रखेंगे।
यस दैट्स राइट, अमेजिंग
अमेजिंग ना। तो अब अगले दो मैच तो कोई मानी नहीं रखते है ना, अब तो सिर्फ संडे का ही मैच जो है जो माने मीनिंगफुल होगा।
जी बिल्कुल आपने सही कहा मजीद भाई, कल का मैच मुझे नहीं लगता कोई खास अहमियत का है, किसी किस्म की कोई दरार पैदा करेगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो फाइनल खेलने जा रहा है, लेकिन बस ये कि जो फॉर्मेलिटी है सुपर फोर के जो स्केड्यूल्स की जो तैयारी थी उसको फॉर्मेट को जो है पूरा किया जाएगा और वही हिसाब किताब जो है जुमे के रोज फ्राइडे को पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान जो मैच होगा उसमें भी जो है ये फ्रेंडली मैच होगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है एक दो अपने सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट कराएगी,
चाचा को रेस्ट कराना चाहिए
संडे के लिए ताकि वो जो खिलाड़ी है
नहीं, चाचा नहीं रेस्ट करेगा,
चाचा को रेस्ट कराना
रेस्ट में नहीं होएगा,
चाचा को रेस्ट कराना चाहिए। आप क्या मतलब आप
इसको
इफ्तिखार जो है
चाचा इफ्तिखार नहीं देखे चाचा इफ्तिखार अहमद बहुत से क्रिकेट के जो शेदाई है वो शायद उनको पसंद ना करते हैं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मिडिल ऑर्डर की, आपको पाकिस्तान की टीम को जो हमेशा से तंगी रही है और
एक्सपीरियंस है बहुत एक्सपीरियंस,
आज आप बैटिंग भी की हो तो शादाब के साथ पार्टी
आ गया।
तो मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में जो जिस तरह से हफीज और शोएब मलिक की टीम में ना होने के बाद हमें एक मिडिल ऑर्डर चाहिए जो संभल के खेल सके, तो मुझे लगता है कि इफ्तिखार अहमद में वो एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो सलाहियत मौजूद हैं जो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में होनी चाहिए। तो मिडिल और उसके साथ साथ जिस तरह मोहम्मद हफीज बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं तो इफ्तिखार अहमद भी बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए और मुझे लगता है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद का होना पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा।
नहीं माजिद भाई का क्वेश्चन था कि क्या रेस्ट जो करा रहे हैं कुछ प्लेयर्स को उनमें से इनका नाम तो नहीं है?
नहीं
मुझे अच्छा खेलेंगे
नसीम शाह और मोहम्मद
रिजवान को तो डेफिनेटली
नसीम शाह को भी
जी आपके वो मेन बॉलर थे मुझे मेन बॉलर को मुझे लग रहा है कि वो शायद रेस्ट करा देंगे वो
फाइनल में खेला
क्योंकि शाहिन शाह आपने जी जिस तरह आपने न्यूज में तस्कर कर रहे थे कि वो टीम का ऐसा नहीं है तो और जिस तरह से पहले मैच में इंडिया के खिलाफ जो उनका कैंप आ गए थे तो मेरे ख्याल से नसीम शाह को रेस्ट कराएंगे और मोहम्मद रिजवान को हो सकता है कि वो रेस्ट कराएं
और हमारे पास दूसरे प्लेयर्स हैं को रिप्लेस करने के लिए
हसन अली को शायद लाएंगे, मुझे लगता है हसन अली को लाएंगे,
हसन अली के शामिल कर लिए गए और जिस तरह मैंने कहा कि खुशदिल शाह सुल्तान मुल्तान के लिए खेलते हैं वो विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं तो वो विकेट कीपर के फ्राइज अंजाम दे सकते हैं।
दहानी आ सकते हैं फिर से वापस टीम में?
दानी तो देखें अभी मॉनिटर में रखे गए हैं वो फिट नहीं है पूरी तौर पर अच्छा। तो मेरे ने लिखा है कि दानी को फ्राइडे में या फाइनल में जो उनको चांस दिया जाएगा।
दानी क्या स्पेशलाइज किसमें करते हैं, ये बैटिंग में बॉलिंग में?
नहीं नहीं बॉलर है,
दानी तो बॉलिंग करेंगे,
बॉलिंग बहुत अच्छी
तो वो आखिरी दो बॉल पे छक्के नहीं मारते
वो भी अच्छी हिटिंग करते हैं
लेकिन इंजर्ड है
कि अभी वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है इस काबिल नहीं कि वो एक गेम खेल सके तो लिस्टी के देखें क्या होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी सारी जो अब नजरें हैं वो इतवार के दिन जो फाइनल होगा पाकिस्तान श्रीलंका का उस पर सारी नजरें होनी चाहिए।
तो यानी फ्राइडे के मैच को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए?
नहीं सर, संडे को फिर क्या है ये सुबह 10 बजे मैच है ये लाइक टुडे?
जी जी बिल्कुल, टोरंटो के हिसाब से सुबह 10 बजे मैच शुरू होगा।
चलो जी
सबकी छुट्टी है संडे को,
दुबई चलो जी।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
अच्छा ये कहाँ मैच कहाँ हो रहा है ये शारजा में है या दुबई में?
जी जी, ये फाइनल है, दुबई में खेला जाएगा।
दुबई में खेला जाएगा तो हाई स्कोरिंग होगा फिर।
यस यस
बिल्कुल।
रिशान, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड या एंड बस संडे को समझ लीजिए आपके मामला
फिट है मामला।
और
अच्छा, क्या आपकी पीढ़ी छीने
पाकिस्तान जीतेगा?
ओह, फिर इतने आप कॉन्फिडेंट है माजिद भाई? अच्छा, अब अगर पाकिस्तान हारेगा तो आप मुझे $50 देंगे, और अगर जीतेगा मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। ये फिर से जो है ना, ये शर्त ऑन है। फिर
एक हमारे काजमी साहब है, उन्होंने फोन किया था।
हाँ, शर्त ऑन है भाई।
उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया कि इनकी कंबल कुट लगाई है। और ये शी डिजर्व्स इट।
चलो जी माजिद भाई के भाई और मेरी बहनों, फिर से ये आज से शर्त फिर से है, अगर पाकिस्तान हारेगा तो माजिद भाई मुझे $50 देंगे, और अगर जीतेगा तो मैं माजिद भाई को कुछ नहीं दूंगी। ये फिर से जी हमारी शर्त लग गई है। ठीक है माजिद भाई?
नो, what part of no you don't understand means
both of them?
No. No. That's not a shirt. No.
अच्छा जी, अच्छा, जरा नीले, ये छोड़े पाकिस्तान शाकिस्तान, नीले जे का जरा जिक्र करें, बताएं जरा
इनकी बातों में।
नीले जे सुनाए, नीले जी,
आप इनकी बातों में ना आया करें, और ना इनकी बातों को कोई सीरियसली लेना चाहिए, और ना इनकी बात सुननी चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट,
एब्सोल्युटली नॉट।
तो वो आप
अच्छा माजिद भाई छोड़ो, ये पाकिस्तान बहुत कर ली है, नीले जे का बताओ जरा, नीले जे
आज रात को जीतेंगे वो?
अच्छा, फिर चार गेम हार के, हारने के बाद?
नहीं 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 नहीं, वो देखिए बॉल्टीमोर पे खेल रहे हैं, फर्स्ट टू गेम्स वो जीते, कल एक गेम हारेगा।
अच्छा, वही है ना,
आज
देखिए माजिद भाई, उन्होंने ना अपनी एवरेज जो है ना सही रखनी है, चार जीतना है, चार हारना है, चार जीतना है, चार, तो एवरेज जो है ना वो सही चलनी चाहिए।
नहीं 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 नहीं, वो जीत गए, जीत, परवाह ना करो, अब ट्रैक पे आ गए,
ट्रैक पे आ गए। अच्छा, कल वो जो एक मेरी तरह का है आपके नीले जे में, मोटा और छोटा, वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है।
हाँ, वो एब्सोल्युटली
वो बिल्कुल मेरी तरह,
यू नो व्हाट,
छोटा सा,
जब आप बात कर रही हैं तो मुझे वाकई में लग
रहा है ना, छोटा मोटा।
उसका नाम है कर्क।
हाँ, कर्क, हाँ, कर्क,
या कर्क जो है, यस, मगर ही इज अ गुड बैट्समैन।
यस आई नो, बहुत स्टाउट है, इट्स वेरी स्टाउट,
जैसे क्रिकेट में कहते ना, इज अ गुड विकेट कीपर, इज अ गुड विकेट कीपर एंड गुड बैट्समैन, तो इज अ, या
बहुत अच्छा।
और अब मैं जब भी देखूंगा इसको तो मुझे
छोटा और मोटा याद आएगा।
बट आज 7 बजे शुरू होना है, पाकिस्तान कह रहा हूं, टोरंटो एंड बाल्टीमोर का गेम जो है 7 o'clock शुरू होगा। एंड कल मैं आपको बताऊंगा कि फिर जो है शाहजा जी गलत कह रही थी, टोरंटो ब्लू जेज जो है जीत गया।
अच्छा,
तो आज जब जीतेगा तो कल मैं बड़ी खुशी आऊंगा, नहीं जीतेगा तो मैंने छुट्टी कर लेनी है।
वैसे ये जगह का नाम देखो जरा, बाल्टी और वो भी मोर है, यानी बहुत सारी बाल्टियां चाहिए,
बाल्टियां लेके रोने के लिए,
बाल्टी भी तो मोर भी,
हम कूट कूट के उनको रुलाएंगे, बाल्टियां लो जी, बाल्टियां, बाल्टी मोर, मोर मोर, हम कहते हैं
मोर बाल्टी,
बाल्टी मोर मोर मोर।
सही है, सही है,
सू करा देना मुझे।
हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, गल माजिद भाई मिलके लड़ेंगे, एक दूसरे के पीछे खड़े। क्योंकि देखें जी, ये जो बड़े बड़े जो होते हैं ना, ये जो मुकदमे होते हैं माजिद भाई, इसमें बड़े बड़े पैसे मिलते हैं। हाँ, और ये गरीबों की तरह हमने $10 million का सू नहीं करना, हमने करना ही $10 million का है, डायरेक्टली, डायरेक्ट,
डायरेक्ट,
100 million, आओ उसमें से। देखें जरा, बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ हमने 10 million जो है ना, जो लायर जीतेगा हमारे लिए, क्योंकि उसने तो लायर ही बोलने हैं, तो उस लायर को हम 10 million दे देंगे, बाकी 90,000 हम बांट लेंगे।
ओ
हाँ,
नहीं, 9 million उसको देंगे, 1 million खुद रख लेंगे।
नहीं, हमने तो 100 million का किया हुआ।
अच्छा, 100 million का,
100 million, हाँ जी, तो वही तो मैं कह रही हूँ, 90 million हमारे हैं फिर।
जब मेरी आंख खुलेगी तो मैं आपको याद करूंगा, सामने नाजरीन। ये ख्वाब चलने दें। थैंक यू सो मच,
थैंक यू, आई
रियली अप्रिशिएट, आई थैंक यू सो मच। एंड कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, बकिया की न्यूज इंशाल्लाह ताला कल हम देंगे, 7:30 बजे तक आपने हमारे साथ रहना है। स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक।
कर्ज مسئلے سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق آل دا سولوشن پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80% محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں پرسکون زندگی اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
परिवार ही सब कुछ है दुनिया भर में अब उनके साथ जुड़ना थोड़ा आसान हो गया है अब जब आप सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर भेजते हैं तो विदेश में आपके प्यारे इसे उसी दिन अपने पास की मनीग्राम लोकेशन से नकद में ले सकते हैं और ये सब बिना किसी ट्रांसफर फी के ताकि आप अपने प्यारों को भेज सकें और ज्यादा उनकी मदद करने का यही सही तरीका है सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ परिवार कभी भी दूर नहीं शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू हैं cibc.com/cashpickup पर जाएं
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157 जी हां 416-570-0157
جی سامعین ناظرین ویلکم بیک اگین اینڈ آپ 6:50 ہو گئے صاحب اب میں آپ کو لے چلوں گا ایک خوبصورت گیت کی جانب اور اس کے بعد پھر ذیشان یہ سیٹ کو سنبھالیں گے چلیے اب ایک خوبصورت گیت ریشما جی کی آواز میں یہ گیت ہے سماعت فرمائیے
سمیل پیدل چلنے والے لوگ خانہ بدوش جہاں پیار تیرا رکھا چل تیرے نال لال میں چوری چوری میں چوری چوری ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਾਈ ਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਾਈ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈ ਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਹੋ ਕੇ چوری چوری وے میں چوری چوری تیرے نال لالیاں اکھاں میں چوری چوری وے میں چوری چوری ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿਛਾਣਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿਛਾਣਦਾ ਦੇਸੀ ਦਾਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ खाने मैं चोरी चोरी ये मैं चोरी चोरी ये मैं चोरी चोरी तेरे ना दिलानिया अखां बे मैं चोरी चोरी ये मैं चोरी चोरी मैं जाता तेनू लखन जिंद जान तू चंगया मैं जाता तेनू लखन जिंद जान तू रद गया पाने बिबा जगत जहान तू दस मन दूर किवे दस मन दस मन मैं चोरी चोरी तेरे लाल मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी
जी सामने नाजरीन वेलकम बैक अगेन एंड सब आपने समाप्त फरमाया रेशमा जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत कह लें गज़ल कह लें इस एब्सोल्युटली अमेजिंग एनीवे साहब मैं जो आपको बताने आया हूँ ना आपके पते की बात बता रहा हूँ मैं आपको ब्रिस्टल प्लेस जो है लग्जरी वन एंड टू बेडरूम स्वीट्स डिजाइंड यहाँ पर जो है ब्रिस्टल प्लेस ये मेन डाउनटाउन ब्रैम्पटन लोकेशन 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 यहाँ पर दो टॉलेस्ट बिल्डिंग आने वाली है एंड गो स्टेशन यहाँ से दो मिनट की वॉक पे होगा नॉट ड्राइविंग बट वॉक पे होगा हाईवे 410 नाइन मिनट्स हाईवे 407 एट मिनट्स हाईवे 401 10 मिनट्स इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट जस्ट 4 मिनट्स अवे इसके साथ साथ रोज थिएटर जो है 2 मिनट्स के फासले पे है गेज पार्क जो है राइट अंडरनीथ 1 मिनट के फासले पे है शेरन कॉलेज 9 मिनट्स पे है और टोरंटो 35 मिनट्स के फासले पर है यहां पर ये जैसे मैंने आपको कहा कि लग्जरी वन एंड टू बेडरूम कॉन्डोज यहां पर आ रहे हैं तो उसके साथ 1+10 एंड 2+10 भी है तो आप जो है इसको अगर बुक करवाना है आपने तो प्लैटिनियम प्राइसेस आपको मिलेंगी यस प्लैटिनियम प्राइसेस और इसके लिए आपको आरफा मुजफ्फर जी से कॉल कॉन्टैक्ट करना है 6478986245 पर 6478986245 आरफा जी का फोन नंबर है बिफोर 13th आज क्या होगी 7 तारीख हो गई बिफोर द 13th ऑफ द मंथ आपने ये बुक करवाना है ओनली सीरियस बायर्स चाहे अपने लिए खुद के रहने के लिए ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो आप आरफा जी से बातचीत कर लें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए दीज कॉन्डोज आर कमिंग ऑन द 13th ऑफ द मंथ उसके बाद फिर इसकी प्राइसेस जो है ऑफ कोर्स जब दूसरे जो सेल्स पीपल है जब वो सेल करेंगे तो प्राइसेस ऑलरेडी गॉन अप इसके साथ जो प्लैटिनम वाले होते हैं इनके पास कुछ गुडीज भी देते हैं वो बिल्डर्स जो हैं और बिल्डर भी कौन है सोलमार बिल्डर जो है वेरी वेल नोन इटालियन बिल्डर इन पूरे नॉट ओनली GTA पूरे ऑन्टेरियो में इन्होंने कई बिल्डिंग्स और कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो इनकी जो दो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं ये आ रही है 199 मेन स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन 199 मेन स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन में ये वाकई होंगी 6478986245 6478986245 आरफा जी का फोन नंबर है इसी के साथ मुझे यहाँ इजाजत दीजिए साहब इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी कल मेरी आपसे मुलाकात होगी चलते चलते एक गुजारिश एक इल्तिजा जो हमेशा करता रहूंगा कि अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें हम आपके लिए दुआगो होंगे आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें खासतौर से हमारे दोस्त हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें और इनके साथ साथ और جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں عطا فرمائے. آمین سما آمین. بشرط زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات، مگر آپ 7:30 بجے تک اس چینل پہ رہیے گا. میں آپ کو لیے چلتا ہوں. پروگرام ان پروگرس اور ریڈی زیشان اس کو پیش کر رہے ہیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.
وقت کئی سوال اٹھتے ہیں کہ پراپرٹی کس کو جائے گی، کسٹڈی کس کو ملے گی، تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کو رہن گے.
SNS لوئرز کو انہ سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لے لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا سلاح لین لئی اج ہی SNS لوئرز نو کال کرو 416-655-2000.
ایسٹ اور ویسٹ اینڈ میں بیسٹ چوائس ٹیکسی اور اسکارو سٹی کیب اب بن گئی ہے ایک لارجر ٹیکسی کمپنی ٹورنٹو ون ٹیکسی، جو آفر کرتے ہیں کیش کالز، کارپوریٹ اکاؤنٹس، ا لارج ٹی ٹی سی کانٹریکٹ فور سٹی وائڈ سیڈان ٹیکسی ورک اینڈ اسٹیکرز فور ایئرپورٹ پک اپ ڈیورنگ پیک ٹائم. ٹیکسی آنرز اور آپریٹرز کے لیے ان کے پاس ہے مستحکم آمدنی بنانے کا شاندار موقع. صرف اس مہینے September 10 تک بروکریج ڈیوز میں زبردست ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. کال 416-252-7777.